की अनुवाद इस प्रकार से है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेश एक सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब ये अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के एक सेकंड से भी कम है और वो ब्रह्म संहिता में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्य गणेशो सितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर् महान् सहियश्च कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन करने पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका विचार अल्प ज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि मनुष्य के इंद्रियां होती हैं। अतएव भगवान इंद्रिय अनुभूति से भिन्न होगा, क्योंकि मनुष्य के स्वरूप है। अतः परमात्मा स्वरूप से विहीन होगा, क्योंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसा पहले कहा जा चुका है। क्योंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे सांस लेते होंगे, और ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करती है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मतैक्य है। नित्यकाल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, ये चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान काल के नियंत्रक है। आध्यात्मिक जगत में काल तो निसंदेह है, किंतु कार्यकलापों पर इसका नियंत्रण नहीं होता। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। ओम अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कालयं द्विपराधाख्यो निमेषः उपचर्यते अव्याकृतश्च अनन्तश्च हेनादिर्जगदात्मनः। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेश के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तो ये जो विषय है बहुत ही चिंतापूर्ण कह सकते हैं। यहाँ शुकदेव गोस्वामी परमाणु से काल की गणना कर रहे हैं, तो काल की गणना करते करते वो भगवान तक पहुंच गए हैं। और भगवान काल से परे हैं या काल के नियंत्रक हैं, इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं काल अस्मि, मैं कौन हूं, काल हूं। तो यहां इस श्लोक में जैसे हम कई दिनों से सुनते आए हैं ब्रह्मा की आयु के बारे में, तो ब्रह्मा का जो दिन है उसको दो भागों में विभाजित किया है। हाँ, जिसको एक भाग है प्रथमार्ध और दूसरा है द्वितीयार्ध, तो इसी को ही परार्ध कहा जाता है। हाँ, एक आधे भाग को। तो यहां ब्रह्मा जी को अभी 50 साल बीते हैं, अभी के जो हमारे ब्रह्मा हैं वो 50 साल के हो गए हैं, और अभी ये जो चल रहा है उनका सेकंड परार्ध चल रहा है, द्वितीय अर्ध। हाँ, अभी वो 51 इयर्स उनकी शुरुआत हो गई है। तो ऐसे ब्रह्मा के जो दिन हैं जिनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्म कल्प था, और अभी जो कल्प चल रहा है वो कौन सा है, वराह कल्प। जब हमारे पुजारी जादी हैं, यज्ञ पूजा विधि आदि होती है, तो वो बोलते रहते हैं वराह कल्पे माघ मासे, ऐसा उच्चारण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कुछ वराह नाम का कोई कल्प है जिसमें ये सब चीजें घटित हो रही हैं। तो ऐसे वराह कल्प में अभी पदार्पण किया है ब्रह्मा ने। और तो ब्रह्मा की आयु की तुलना की गई है भगवान से संबंधित। तो यहां शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक बार जब सांस लेते हैं उसमें कितने सारे स्वयं ब्रह्मा अपने बारे में बोलते हैं, जो ब्रह्म संहिता का ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है, यश गणेश स्थित काल मथावलंब्यम जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हजारों ब्रह्मा ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, और सांस लेते हैं तो कितने सारे तुरंत विलीन हो जाते हैं उनमें, उनकी आयु खत्म हो जाती है। तो यहां कहते हैं निमिष काल ब्रह्मा की आयु है, सेकंड से भी बहुत अधिक भगवान की तुलना में। तो हमें जानना चाहिए कि काल के नियंत्रण में हर एक जीव है, इसलिए भगवान, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भगवान कहते हैं कालोस्मि, अर्जुन को भगवान ही बताते हैं कि मैं वास्तव में काल हूं। और काल करता क्या है, काल सबको ठीक करता है। कभी कभी हम अपने योग्यताओं से घमंडित हो जाते हैं, अपना धन, अपना बल, अपनी शिक्षा, अपना सौंदर्य, अपना पद, उससे हम क्या हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। तो ये काल सबको सिखाता है, सबको ठीक करता है। थोड़े दिन के लिए हम उड़ सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, काल के द्वारा हाँ सबकी खिंचाई करते हैं और सबको ठीक करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा इस काल का काम क्या है, लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। काल का काम है क्षय करना, सब चीजों को क्षय करते हुए जाना, ये काम का काल का कार्य है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जात शहीद ध्रुव मृत्यु। हाँ, भगवान कहते हैं जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो ये कौन करवा रहा है, काल, भगवान की ये जो परम शक्तिशाली शक्ति है, काल के माध्यम से सारे जीवों का, सारे वस्तुओं का इस सृष्टि में क्षय हो रहा है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान भी काल के प्रभाव में है, लेकिन नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को भी संदेह हुआ था, आप कैसे कहते हो कि आपने भगवद गीता का उपदेश उस सूर्य देव को दिया सहस्र साल पहले, करोड़ों करोड़ों साल पूर्व? आप और मैं एक साथ ही पैदा हुए हैं, हाँ? तो भगवान कहते हैं, अरे तुम काल के प्रभाव में है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वानि नाहम वेद परंतप, कि हमारे तो बहुत जन्म हुए हैं लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो, हाँ? क्योंकि अर्जुन एक सर्वसाधारण जीव है जो काल के प्रभाव में है, लेकिन भगवान काल शक्ति से परे हैं। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो क्षय नहीं होता है। उनका शरीर कैसे है? सन्मय चिन्मय आनंदमय, भगवान का दिव्य शरीर है जो काल से प्रभावित नहीं होता, भगवान उनसे परे हैं। तो दो जो व्यक्ति है वो काल से, काल के प्रभाव से सदा दूर है, एक तो स्वयं भगवान कृष्ण और दूसरे उनके शुद्ध भक्त। तो भगवान के जो परम स्नेही परम प्रेमी भक्त है उनके ऊपर भी काल का प्रभाव नहीं है, हमें वैसे महसूस होता है। इसी कारण से भगवान श्रीमद् भागवतम में शौनक ऋषि इस बात को बोलते हैं कि जिसने भी भगवान की एकमात्र चरणों की शरण ग्रहण की है उसकी आयु को काल हरण नहीं कर सकता। काल का क्या सामर्थ्य है? जिसने भगवान की परम पाद उनके चरणों की शरण ग्रहण की है, जो काल के प्रभाव से रहित हैं, तो ऐसे शरणागत को भी काल प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकता। इसलिए शौनक ऋषि जब शुद्ध को समय से और सुनने की बहुत उत्कंठा जागर बोल रहे थे, जब एंट्री की श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी ने और दूसरा द्वितीय स्कंद की शुरुआत में बहुत बोलना शुरू कर दिया, डांटा पहले कि क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत बोला, और बाद में का क्या करना चाहिए व्यक्ति को, फिर ये सब संवाद हुआ छोटा सा। ये सुनकर शौनक ऋषि को बहुत आनंद हो गया। अरे ये जैसे होता ना कि क्रिकेट में कोई आता है बैट्समैन, आते पहले चौका मार दे, वैसे ही शुकदेव गोस्वामी ने किया। पहले एंट्री में इतना अमेजिंग टॉक दिया, ये सुनकर ही 88,000 ऋषि और शौनक, ये जो शौनक थे, ये सब लोग बहुत आनंदित हो गए। शुद्ध गोस्वामी क्या वर्णन किया आपने शुकदेव गोस्वामी की एंट्री का। तो फिर जब उन्होंने शुद्ध ने बंद कर दिया, थोड़ी देर रुक गए, तो शौनक ऋषि ने फिर बोलना शुरू कर दिया। फिर शौनक ऋषि द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में लंबा बोलते हैं, और जिसमें शुद्ध गोस्वामी को बताते हैं कि आप और आगे बताओ, शुकदेव गोस्वामी ने और क्या वर्णन किया। तो वो बोलते हुए शौनक ऋषि इस चीज को स्थापित करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने कृष्ण की एकमेव शरण ग्रहण की है उसके ऊपर काल प्रभाव नहीं डालता। वो बोलते हैं आयु हरन्ति वै पुंसः, आयु को हर लेता है। भगवान कहते ना मृत्यु सर्व हरश्चः, हर जगह भगवान अहम अहम करते हैं। हम अहम अहम करें तो हम माया में फंसते हैं, अहम मम, भगवान योग्य है। तो यहां भगवान कहते हैं, शौनक ऋषि कहते हैं आयु हरन्ति, आयु को हर लेता है, आयु हरन्ति वै पुंसः, वै मीन्स निश्चय, आयु का हरण होता है पुंसा मीन्स पुरुष के, हाँ, उद्यान अस्तम च यन असो, असो मीन्स सूर्य, जब ये सूर्य उदित होता है और अस्त होता है हम तो उसके सौंदर्य को देखते रहते, उठते ही सूर्य को इतना उदित हो रहा है, हाँ, जब कन्याकुमारी जाओगे तो वहां लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं और वो अस्त देखने के लिए भी, उदित होता है तो मानो ऐसे जैसे कि समुद्र से ऐसे सामने निकल रहा है ऐसे आता है, और कुछ आवाज भी होती है। कुछ साल पहले हम थे वहां, तो सुबह सुबह गए सब भक्तों के साथ, सूर्य कैसे उदित होता है और अस्त कैसे होता है देखने, तो हजारों की संख्या लोग बैठते हैं केवल ये देखने के लिए, हाँ उदित हो गया शाम को अस्त हो गया। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि यह सूर्य बहुत चलाक है, हमारे आयु को क्या कर दिया, अपने साथ साथ ले गया। हाँ, चोर जैसे आपके आता है मित्र के समान आपके आसपास, और जाते जाते आपके जेब में हाथ डाल के आपका धन लेके जाता है, वैसे ही ये सूर्य उदित हो रहा है। तो एक प्रकार से हमें आनंद होना चाहिए, क्या कि आज कृष्ण ने मुझे ये दिन दिया है उनकी ओर अग्रसर होने के लिए, हाँ कुछ अचीव करने के लिए। लेकिन जैसे अस्त होता है तुरंत हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि आज भी मैं विफल हो गया, भगवत स्मरण मेरे जीवन में नहीं बढ़ा, कृष्ण भावना मेरे हृदय में मेरे चेतना में बढ़ी नहीं है। बल्कि सूर्य अस्त होता है तो पीड़ा का अनुभव होना चाहिए, दुख होना चाहिए। तो कहते तश्चरते यत् क्षणोनीतम उत्तम श्लोक वार्तया। शौनक ऋषि उस श्लोक में कहते हैं तश्च तश्च अर्थे तश्चरते, उसका मतलब है कि जो कृष्ण का भक्त है या गुणगान करने वाला व्यक्ति है उसके सिवाय, रते में सिवाय, उसके बिना यत् क्षणोनीतः उत्तम श्लोक वार्तया। जो व्यक्ति सदैव अपनी जीवा से कृष्ण का गुणगान करता है और कानों के द्वारा कृष्ण के मधुर चरित्र को सुनता है, उस व्यक्ति की आयु कोई भी हरण नहीं कर सकता, काल उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए यह सरल विधि है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या कारण है टाइम की गणना की जा रही है इस पूरे अध्याय में, ये लोग पागल थोड़ी हैं। इस अध्याय में काल की गणना करके हमें सारा डिटेल भी पढ़ भी ले, हाँ ये परमाणु से दूसरे परमाणु तक कितना अंतर है और त्रुटि और इस दुनिया भर की चीजें समझ ले, होगा क्या उससे। हाँ, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते इस चैप्टर को समझने का अर्थ है दो चीजें समझना, और वो दो चीजें क्या है, एक है कि भक्तिमय सेवा मुझे त्वरित करनी है, तीव्रता से और क्विकली करनी है, और दूसरा है कि मेरे पास ये मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है जिसको यूज करते हुए भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है। यदि कोई बहुत विद्वत्तापूर्ण इसका अध्ययन कर ले, सारे त्रुटि मिनट क्षण निमेश इनका पूरा मास्टर हो जाए, लेकिन ये दो चीजों के लिए समझता नहीं, उस पर नहीं चलेगा, तो इस परमाणु से काल की गणना करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा टाइम की चर्चा करने का मतलब है पहले ये हृदय में स्थापित करना कि भक्तिमय सेवा मुझे त्वरित करनी है, डिले नहीं करना है आध्यात्मिक जीवन की जो प्रैक्टिस है, और दूसरा कि ये मनुष्य जीवन मुझे बहुत दुर्लभ मुझे प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से मैंने मुझे कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना है। हाँ, संबंध जाने या भजते भजते, हाँ जब भजन करता रहेगा व्यक्ति तभी वो भगवान के साथ संबंध को जान सकता है, और इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जीवन मिला है भगवान के साथ संबंध को समझने के लिए, क्योंकि दो चीजें हैं जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक है काल, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो समंदर में जो ज्वार और भाटा आता है ना वो भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो इसलिए हमें मूर्ख व्यक्ति की तरह अपना जो समय है वो बिताने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि मुझे इतना अमूल्य ये शरीर मिला है, शरीर तो नाशवान है, इस शरीर की इतनी निंदा की गई है शास्त्रों में, लेकिन इस शरीर की महिमा का भी गान शास्त्रों में उतनी ही मात्रा में किया है जितनी मात्रा में इस शरीर की निंदा की है। इसलिए भागवतम के 11 कैंटो में वर्णन आता है एकादश स्कंद में, जहां अवधूत ब्राह्मण महाराज यदु को बताते हैं इस शरीर के मूल्य के बारे में, वो कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, कि बहुत संभवान्ते जन्मों के बाद ये आपको दुर्लभ शरीर मिला है, सुदुर्लभ बोला गया है मनुष्य जीवन। मनुष्य मार्थदम अनित्यम अपिह लोके, वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है लेकिन अर्थदम ये बहुत बड़ी चीज देने वाला है। हाँ, लेकिन एक दुख दुख की बात क्या है, अनित्य, ये बड़ा नित्य नहीं है, अनित्य है। तूर्णम यतेत्न पतेत अनुमृत्यु यावत, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए कि ये तो जल्दी मेरे हाथ से छूटने वाला है लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है। आपने निश्चय साय विषय खल सर्वतर्षा, मुझे अपने श्रेय के बारे में जानना है, मुझे अपने अपने अपना कल्याण साधना है इस शरीर के द्वारा। और वो कहते वो मूर्ख व्यक्ति है जो व्यक्ति ऐसा शरीर प्राप्त करके विषयों में लगा रहता है। फिर वो अवधूत ब्राह्मण कहते हैं विषयः खलु सर्वतः शाप, कि ये जो विषय सुख है वो सारे शरीरों में वैसे ही प्राप्त होने वाले हैं, इस मूल्यवान शरीर का इस्तेमाल क्यों हम विषयों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि विषय शब्द आता है किससे, विष से, विषयों में विष भरा हुआ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते विषय विषानले दीवानिशी ही आजुले जुड़ाए थे ना कहीं उपाय। हे श्री कृष्णा, मैं विषय रूपी आग में दिन रात जल रहा हूं और मेरे पास कोई और उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इतना अच्छा शरीर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होकर भी हम यदि भौतिक विषयों में मग्न रहते हैं तो हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। कोई लोग धर्म धर्म के नाम पर एक ही कार्य करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, पाप भी करता है विषयों को भोगने के लिए, पुण्य भी करता है विषयों को भोगने के लिए। तो भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। भगवान कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज इसका वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, कृष्ण कहते हैं अरे मेरा भजन करके केवल विषय सुख की कामना करता है, अमृत छाड़े विषय मागे यही बड़ा मूर्ख। वो कहते अमृत को छोड़कर ये विषय को मांग रहा है, इससे अधिक मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। तो भगवान भी उस व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। तो ये शरीर ये जीवन विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। तो ये विषय हमें क्या करते हैं, ये विष पीते हम तो ये शरीर का विनाश हो सकता है। विषयों को भोगेंगे तो कितने सारे शरीर बदलने पड़ेंगे जिनकी कोई तुलना नहीं है, गिनती नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि विषयों को भोगने में जब हम लगते हैं तो वो जो संस्कार है वो हमारी चेतना में स्थित हो जाते हैं और फिर जिस जिस शरीर में जाता है व्यक्ति उन संस्कारों को लेके जाता है और कंटिन्यूअसली पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे बहु दुस्तारे। शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु हमें लगना है। तो ये नहीं, क्योंकि कितने भी विषय भोगो उसमें संतुष्ट नहीं होंगे। अभी कितनी बार रसगुल्ले गुलाब जामुन खाए हैं, कभी ऐसे लगा कि अरे बहुत तृप्त हो गया प्रभु, बस कल से नहीं, वो खत्म होता है पेट खाली हो जाता है तो फिर से वो जो भूख है वेग है वो अनावर हो जाता है, फिर से चाहिए। तो ये विषय वैसे ही है। महाराज ययाति ने अपने पत्नी के सामने दोनों हाथ खड़े कर दिए, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण के लिए नहीं, इसलिए कि पत्नी इतने आसक्त हो गए थे, एक से नहीं भागा उसने चाहिए। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजकन्या शर्मिष्ठा, वहां वो बकरे का उदाहरण कहते, एक बकरा था और एक बकरी थी, अपने आप को बकरा कह रहे थे और पत्नी को बकरी कहते, कि फिर वो पूरा पूरा कथा सुनाते हैं, दुख भरी कथा। उसमें वो अपने पत्नी को कहते हैं, वो कहते हैं, न जातु काम कामाना उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे वो भूय अहेवादि वर्तते। वो कहते हैं न जातु काम कामाना, काम काम की पूर्ति करके जाता नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही है हविषा कृष्ण वर्तमे वो। हविषा का मतलब है बटर या घी, सोच सकते हो मक्खन जो बिल्कुल सॉलिड है, और कृष्ण वर्तमे वो मतलब आग। ये तो वैसे ही है कि घी या बटर आग में डालते हैं तो आग बुझने वाली नहीं है, बल्कि वो क्या करेगी और जोर जोर से बड़े लपटों के साथ बाहर आएगी। एवादि वर्धते, वर्धित होती है। इसलिए वो कहते हैं पुराण में कि व्यक्ति हम जितना मर्जी के विषयों को भोगे और काल हमें लगता है कि टाइम जा रहा है, टाइम छोटा पड़ रहा है, भोग करता है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि समय बड़ा कम है, ज्यादा समय चाहिए भोगने के लिए। लेकिन हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये जो विषयों को भोगते हैं उससे कभी संतुष्टि अनुभव नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं जेरियंती जेरियतः केशा दंता जेरियंती जेरियतः, कि बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है उसके बाल सफेद हो जाते हैं, दंता जेरियंती जेरियतः, और बूढ़ा हो जाता है उसके दांत भी गिर जाते हैं। लेकिन कहते दो प्रकार की जो आशा है ना हृदय में, बूढ़े होने पर भी नहीं जाती, ऐसी बलवान रहती है। क्या है वो? धनाशा जीवित आशा, जेरियन तो भी न जेरियती, धन प्राप्ति की आशा और जीवित रहने की आशा, ये दोनों कभी भी जाती नहीं है व्यक्ति के हृदय से। क्यों? क्योंकि दोनों में एक ही चीज छुपी हुई है, भोग भोग भोग, भोग करना है मुझे, एंजॉय करना है, विषयों को भोगना है। धन आता है तो क्या चाहिए व्यक्ति को? भोग चाहिए। स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। और जीवित रहना है, मरूंगा तो ये सारा भोग नहीं मिलेगा मुझे, है ना, मरना नहीं है मुझे, संसार को भोगना है अच्छे से। इसलिए वो कहते हैं बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो भी हृदय से ये दो प्रकार की आशा जाती नहीं है, एक तो धन प्राप्ति की आशा और दूसरा है इस संसार में लंबे समय तक जीवित रहने की आशा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति भूल जाता है कि इस विषयों में सुख नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं विषय सुख जो इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं वो शुरुआत में तो बड़ा अमृत के समान लगता है, मीठा, परिणामे विषमेव, भगवान कहते हैं, लेकिन परिणाम इसका क्या है? विष है, दुख है, कष्ट है, यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति थोड़े से विषय भोगों को चखने के लिए अपना अमूल्य जीवन और जो समय है उसका दुरुपयोग करता है। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि इसे कैसे ऊपर उठा जाए, कैसे ऊपर उठे जिसके द्वारा ये जो भोग करने की भावना है विषयों के प्रति, जिससे हम बिल्कुल अलग हो जाए। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी उपाय बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी सलाह देते हैं भागवतम में। वो कहते हैं कि आपको एक चीज को ना भर भर के पीना पड़ेगा। हम तो सब भूख लगते हैं तो पूरा ग्लास भर भर के जूस और दाल कढ़ी सब कुछ पीते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप एक चीज का निरंतर भर भर के, ये शब्द यूज किए उन्होंने, भर भर के पियोगे तो ये विषय सुख के प्रति आप आकर्षित नहीं होंगे, उससे बिल्कुल वो अलग हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं पिबन्ति च पिबन्ति भगवत आत्मना सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संमृतं पुनान्दिते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणं सरोवर हंतिकम, वो कहते पिबंती ये भगवत आत्मना सताम, एक चीज को पीना पड़ेगा और ये आवश्यक है। आप ऐसे जीवन बिताएंगे, दिन बिताएंगे और बस थोड़ा बहुत भागवत आधा घंटा सुना, उसमें भी हमारी गर्दन पेरी ऐसी नीचे लगी होती है, ऐसे की टेकने वाली है नीचे, गर्दन ऐसी ऊपर होनी चाहिए चातक पक्ष के समान। और कहा हम पिएंगे वो कृष्ण कथामृत, तो इसलिए वो कहते हैं एक चीज आपको पीनी पड़ेगी, पिबंति भगवत आत्मना सताम। हाँ, भगवत आत्मना का मतलब है जो भगवान कृष्ण का प्रिय है, ऐसे भक्त के द्वारा क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। बल्कि भगवत आत्मना मतलब सताम मीन्स डिवोटी, भगवान का आत्मा एक प्रकार से कौन है, उनका भक्त है, इसलिए भगवान वहां थे, मथुरा में थे, तो उद्धव को कहते उद्धवा, अरे आपसे अधिक उद्धव को कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है ना मेरी पत्नी, वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, और ये महादेव है ना शंभु, वो भी इतने प्रिय नहीं है, उनको ही छोड़ो, मेरा अपना भाई शंकर बलराम वो भी इतना प्रिय नहीं है, उद्धव तुम इतने प्रिय हो मुझे। फिर हाथ पकड़ लिया भगवान ने और फिर अपना रोना धोना शुरू कर दिया। पहले हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते ना तो उसकी बड़ी, उसको कहते ना ब्रेड में क्या लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, वैसे ही है संसार में, भगवान से ही सारा आया है। भगवान कहते ना सर्व कारण कारणम, तो अभी भगवान अकेले थे मथुरा में और भगवान बहुत अधिक दुखी थे, कृष्ण से अधिक दुखी मथुरा में कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय ब्रज में छोड़ के आए थे। हृदय में जब यातना होती है तो कुछ काम नहीं करता कोई औषधि, तो भगवान ने फिर इतनी स्तुति की और वास्तव में भगवान प्रीति रखते थे उद्धव से, और फिर उनका हाथ पकड़ा, फिर दुख भरा वचन बोले, उद्धव मोहे ब्रज विसरतना है, हे उद्धवा ये जो ब्रज है ना उसको भूल नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कहते भगवत आत्मनाम सताम, ये जो सताम डिवोटीज है भक्त है वो भगवान की आत्मा है। हाँ, तो ऐसे भक्तों के द्वारा कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम, समृतम मतलब पूरा भर भर के पीना पूरी होकर। हाँ, कैसे पियो, जो कटोरा है ना कटोरा वो क्या है, कान है, कान को ऐसे कटोरे को ऐसे कर दो बड़ा सा और उससे ऐसे पियो, कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। हाँ, कृष्ण कथा सुने बिना संभव नहीं है, नाम की जो स्वरूप शक्ति है वो कृष्ण कथा है, शास्त्र कहते हैं। तो ये कृष्ण कथा सुनने के लिए देव, हम सोचते देवलोक में बड़ा सुख है और वहां अप्सराएं भी है, रंभा उर्वशी मेनका और सोमरस भी है, या कहा आमरस और बड़े सारे रस है, लेकिन वहां एक ही रस है सोमरस, नाम भी कितना अच्छा है, वो सोमरस पीते हैं तो बड़े रुष्ट पुष्ट रहते हैं भोग करने के लिए, लेकिन वो बेचारे फिर भी वो लालायित रहते हैं, मुझे भारत में जाना है इंडिया जाना है। अब भागवत तो पढ़ोगे 11 कैंटो में, भूल गया वो श्लोक, भारत भूमि ऐसे कुछ है उसमें एक शब्द, तो देवतागण ऐसे ऊपर आपस में चर्चा करते हैं कि भारत भूमि में जाना है, अरे जन्म लेना है मुझे, क्योंकि वहां कृष्ण भक्ति है कृष्ण कथा है। इसलिए तो जब गौर कथा हो रही थी मायापुर में, नैमिषारण्य है ना मायापुर में, तो वहां वो लेक्चर दे रहे थे सुन गोस्वामी गौर कथा अमृत पर, वो शिवजी ने सोचा यहाँ ठीक नहीं अभी रहना कैलाश में, चलो निकलता हूं लेक्चर अटेंड करने के लिए, कथा 7 दिन की। उन्होंने सोचा अरे अभी लेक्चर शुरू होने वाला है, सबसे पहले पहुंचना है मुझे, शिवजी ऐसे भक्त नहीं है कि प्रसादम के समय पहुंचने वाले, बल्कि उनका जो गाड़ी था वो प्रसादम के समय पहुंचने वाला ही था, उनका गाड़ी कौन सा है, नंदी बैल। और ब्रह्मवेद पुराण में आया है कि शिवजी से इतना प्रेम करते हैं वो नंदी भगवान कृष्ण बने हैं उनके लिए, तो इन्होंने सोचा कि बैल को कहां ले जाए, इतना वो पूरा एंड में पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा देखा उधर देखा, अरे ब्रह्मा का गाड़ी बाहर खड़ा है, हंस हंसवान रफ्तार से उठता है, आज भी जाओगे हंसवान का दर्शन आप करते हो मायापुर में। तो उन्होंने कहा उनका गाड़ी नहीं, तो ब्रह्मा तो बैठे हुए किसी जगह, क्योंकि ब्रह्मा का प्रॉब्लम क्या है, एक द्विप्रारब्ध है ना, हाफ डे और सेकंड हाफ डे ना, पहले हाफ डे तक पूरा सृष्टि करते रहते बिजी बिजी बिजी, और जैसे अभी एक अभी आजकल अच्छे दिन चले हैं किसके ब्रह्मा के इंडिया के लोगों के पता नहीं कि ब्रह्मा के अच्छे दिन है, 51 ईयर शुरू हो गया अभी उनका, और वर्णन आता है कि इस आधे दिन में वो किसकी उपासना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, किसकी, चैतन्य महाप्रभु की, पूरा ये आधा दिन अभी वो गौर लीला में गौर रस में मग्न है, इसलिए तो वो जल्दबाजी की उन्होंने जाकर जन्म लिया ना नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में। हाँ तो ऐसे वो जो शिवजी हैं इतने तीव्रता उनका गाड़ी चुरा लिया, हंस को ले लिया, बैठ के आ गए पूरा नवदीप मायापुर में, और सुत गोस्वामी से क्या सुना, गौर कथामृत उन्होंने सुना। तो कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम, तो ये देवतागण भी नीचे आना चाहते हैं, भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं सुनने के लिए। अभी जब देवताओं को पता चला महाराज परीक्षित को शाप मिला है, और श्रीमद् भागवतम, और वो भी किसके द्वारा, वक्ता कौन, शुकदेव गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी जैसा वक्ता कोई नहीं है कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए। कृष्ण कथा के वो परम प्रेमी है शुकदेव गोस्वामी, इसलिए हमें सदैव लालायित होना चाहिए महान वैष्णव से सुनने के लिए। उन्नत भक्तों से हम सुनते हैं तो वो श्रवण अत्यधिक प्रभावशाली है। हाँ बल्कि परीक्षित महाराज का परम सौभाग्य था कि कृष्ण ने उनके लिए कौन दिए, शुकदेव गोस्वामी दिए, और शुकदेव गोस्वामी बैठने वाले थे प्रवचन देने के लिए, तो ये देवतागण आ गए दौड़ते हुए। उन्होंने सोचा ये परीक्षित को क्यों लेक्चर दे रहा है, हमें दे दे सुधर्मा सभा में, हम सुनेंगे कथा आपसे। कहा इनको तो जीवन चाहिए ना, इनको मरना नहीं है ना परीक्षित को, ठीक है पूरा एक घड़ा भर के लेके आ गए अमृत का, और शुकदेव गोस्वामी के हाथ में दे रहे थे। शुकदेव गोस्वामी आपसे निवेदन है, ये जो अमृत का कलश घड़ा ले लीजिए और ये बेचारे परीक्षित को पिलाइए, और जो आपके पास हृदय में जो कृष्ण कथा का घड़ा है ना वो खाली करिए हमारे लिए। उन्होंने कहा रास्कल तो नहीं बोला होगा शुकदेव गोस्वामी ने, प्रभुपाद बोलते तो बोल देते, हाँ शुकदेव गोस्वामी ने बोला रास्कल देवता हो, तो ऐसे नहीं बोला, लेकिन बहुत डांटा शुकदेव गोस्वामी ने। उन्होंने कहा आप लोगों के अंदर कृष्ण कथा को स्वीकार करने की योग्यता नहीं है, और ये वास्तव में परीक्षित महाराज योग्य हैं, वो लालायित है। तो ऐसे देवतागण भी कृष्ण कथा के प्रति श्रवण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लालायित रहते हैं, इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये विषय वासनाओं से रियली हमें छुट्टी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए छुट्टी, वैसे आनंद तो बड़ा आता है, बड़ा आंखों के लिए सुंदरता है, स्पर्श का सुख है, कानों के लिए मधुर मधुर गीत है, जीवा के लिए इतने सारे व्यंजन है। तो इस प्रकार से हम इनसे यदि छुट्टी चाहिए तो एक ही चीज हो गई थी, कथामृतम श्रवण पुटेश समृतम, कान को अपना एक प्याला बनाओ कटोरा, जिससे ऐसे कृष्ण कथामृत को लो भर भर के पियो, उसे भर भर के पियो। पुनांतिते विषय विदूषिताशयम्, जो ये कल्मश युक्त आशा है ना उससे हम क्या हो जाते हैं, पुनातिते पवित्र हो जाते हैं। व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्, और वो व्यक्ति तुरंत भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है, हाँ यदि व्यक्ति इस चीज को पकड़ लेता है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए, भागवतम हमें अपना सबसे क्लोज फ्रेंड बनाना चाहिए, भागवतम के अलावा किसी से हमें प्रीति, किसी से हमें आसक्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षित महाराज के जीवन से देखो ना, मृत्यु की कगार में खड़े हैं, मरणासन्न है, उन्होंने कुछ नहीं चाहा। शुकदेव गोस्वामी को निवेदन किया कि आप क्या करो मुझे, अरे भागवतम का जो क्रिएशन है वो इस कली के पतित जीवों के लिए ही है, ये जो संकलन कंपाइल किया है व्यास देव ने, इसलिए कुछ भी हो श्रीमद् भागवतम को हाथ से नहीं छोड़ना है, श्रीमद् भागवतम को निरंतर पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम को उन्नत वैष्णवों के द्वारा समझना है, श्रवण करना है, तो फिर ये जो हृदय में दूषित आशा है भोग करने की, धनाशा, जीवित आशा और बहुत सारी आशा है जिनसे हम मुक्त हो सकते हैं, और यही ओनली एक में उपाय है। इसलिए और जब हम इस कृष्ण कथा में कृष्ण नाम रूप गुण लीला में मग्न होते हैं, लगते हैं, तो फिर हम किससे परे हो जाएंगे, काल से परे हो जाएंगे। अभी हमें अपनी माला की गणना नहीं हो रही है, काल की गणना करने के लिए हमें कहा गया है, सुबह 16 माला की गणना करते करते परेशान हो जाते हैं, और उसमें भी आजकल चैप्टर चल रहा है किसकी गणना करो, काल की, इतना कठिन कठिन चीजें। तो महारे नाम की गणना संख्या पूर्वक नाम लेंगे तो फिर काल की गिनती से आपका नाम कट जाएगा, तो इसलिए आवश्यक है। फिर काल हमारी आयु को हरण नहीं करेगा, इसलिए शौनक ऋषि कहते हैं। तो काल के बारे में रूप गोस्वामी ने भी कहा है, उन्नत भक्त का एक लक्षण वो क्या है, सदैव अव्यर्थ कालत्वम, और अ को हटा दीजिए, व्यर्थ कालत्वम, वो हमारे लिए है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें अपना जो समय है उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज के लिए, भगवत कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, अन्यथा काल हमें एक दिन दबोच लेगा और फिर हम बाद में सोचते रहेंगे, अरे इतना साल हो गए, इतने दिन हो गए, अभी मृत्यु के नजदीक में हूं, और ये नहीं, कोई भी चीज ये नहीं सोचने कि कल करूंगा, मुझे आज ही करना है, आज ही भागवतम का अध्ययन शुरू करना है, आज ही मुझे हरे नाम अच्छे से लेना है, आज ही मुझे जो भी सर्विसेज है वो करनी है, कल हम इस चीज के लिए जीवित नहीं रहेंगे। और जो सोचता है कल मैं जीवित रहूंगा वो वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए ये परम आवश्यक है, काल की इस गणना से हम सीखते हैं कि मुझे भगवत भक्ति में तीव्रता लानी है। तीव्रे न भक्ति योगे न यजतः पुरुषः परम, तो भगवत भक्ति में तीव्रता लानी होगी, और वो तीव्रता आती है जब हम सुनते हैं अच्छे से, शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसके आधार पर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं तो भक्ति में तीव्रता आती है। अभी हमें किसी ने इनवाइट किया प्रसाद के लिए और गाड़ी में आप बैठो, एक्सीलेटर में पाव ही नहीं दो तो आप धीरे से थोड़ी दबाओगे, पहुंचना है जल्दी, इसलिए भोजन करने के लिए पूरा पाव ऐसा लगोगे, क्विकली पहुंचते हैं तीव्रता से। तो वैसे ही भगवान की ओर जाने के लिए हम, बाकी कहा शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, किट्टी पार्टी में जाना है, सब में बड़ी तीव्रता है, भागवत क्लास जाना है, मंगल आरती जाना है, उसमें बिल्कुल तीव्रता खत्म हो जाती है। तो तीव्रता रखनी है तो आध्यात्मिक कार्य में, और दूसरा कि अपना ये जो मनुष्य देह है उसके मूल्य को भी हमें उससे अवगत होना चाहिए, इतना निकृष्ट नहीं है मनुष्य शरीर, बहुत मूल्यवान है, लेकिन उसका इस्तेमाल भगवत सेवा में उचित रूप से हमें करना चाहिए, नहीं तो भगवान काल के रूप में आएंगे और हमें दबोच लेंगे। हाँ, जैसे खरगोश है, खरगोश आके बंद कर देंगे तो मुझे कोई नहीं देखना है, मुझे कोई नहीं खाएगा। वैसे ही हम हैं, कहते हैं टाइम बहुत है मेरे पास, हाँ अंतिम समय कभी भी आ सकता है, हाँ जो मृत्यु है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु के बारे में पहले से अवगत होने से क्या होता है, व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में उसकी तीव्रता आ जाती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं भगवान के दो रूपों को सामने रखो हमेशा। कौन से दो रूप? कोई कहेगा राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मण हनुमान, नहीं नहीं मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अच्छे लगते हैं, नहीं वो कहते दो रूप, एक रूप है मृत्यु काल। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते मृत्यु को सामने रखो अल्टर में, और दूसरे कौन? हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम काल को सामने रखेंगे, मृत्यु को सामने रखेंगे, तो रोज हर प्रतिक्षण ये याद रहेगा कि मेरे पास समय कम बचा है, बस मुझे भागना है, अभी दौड़ लगानी है, भगवत भक्त में कम समय है, सब कुछ तेजी से मुझे करना है गंभीरता से। हाँ तो ऐसे होगा, काल को मृत्यु को सामने रखते हैं तो हरि नाम के प्रति हम गंभीर हो जाते हैं, नहीं मुझे नाम करना है, नाम भजन बढ़ाना है, श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से अध्ययन करना है, हाँ उन्नत भक्तों से श्रवण करना है, हाँ ये जो चीजें हैं फिर हमारे जीवन में बढ़ती हैं, हम उसके लिए गंभीर हो जाते हैं। और जब हरि नाम लेते हैं, हरि नाम सामने रखते हैं, तो ये जो मृत्यु है, संसारी कष्ट आदि है, उनसे हमें भय नहीं लगता, उनको हम सरलता से सहन कर पाते हैं, हम उनसे भयभीत नहीं होते। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं एक सूत्र है ये मृत्यु और हरि नाम, ये जोड़ा सामने रखो और भगवत भावना में हम तेजी से आगे बढ़ो। इसलिए परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को यही तो पूछते हैं कि मैं मरणासन्न हूं, मृत्यु के नजदीक खड़ा हूं, म्रियमानस सर्वथा। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज अपने लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा म्रियमानस सर्वथा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेला मर रहा हूं, मेरे लिए बताओ कुछ, जो भी मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए क्या करना उचित है, उनकी उनके लिए बताओ प्लीज। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, बल्कि उन्होंने चार चीजें पूछी थी। क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, हाँ किसका पूजन करना चाहिए, और किसका स्मरण करना चाहिए। हाँ तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं, और परीक्षित महाराज के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी सबको कनेक्ट करते किससे? हरि कृष्ण से। ये सारी चीजें कृष्ण से संबंधित करनी चाहिए। तो बल्कि आचार्य ने बहुत सरल करके सारा सार हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम के रूप में, और हम रोज नित्य भागवत सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से भागवत सेवन नहीं हो रहा है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को, भागवतम की शिक्षा आदि को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने ये सारी चीजें और अधिक सरल की हैं हमें समझने के लिए। तो आज के श्लोक में तो यही वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के, कि जो भगवान है वो कारणों के कारण है, उन पर काल का प्रभाव नहीं होता, और हम काल के प्रभाव में है, तो हमें भी काल के प्रभाव से मुक्त होना है। तो जो काल के प्रभाव से रहे थे कृष्णा या उनके महान भक्त, उनका आश्रय लेना होगा, और उनका आश्रय का मतलब है भगवान का जो कृष्ण कथामृत है, नाम आदि है, नाम संकीर्तन, हाँ, उसमें निमग्न होना होगा। तो फिर हम हमारे ऊपर ये जो भौतिक काल है उसका प्रभाव नहीं होगा, नहीं तो फिर हम सदैव काल के प्रभाव में गोते लगाते रहेंगे। तो ये काल की गणना और नाम की गणना ये हमारे ऊपर है, किसकी गणना करनी है। हरि नाम की गणना करेंगे तो काल की गणना से छूट जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराश्रम भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।